SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारतीय उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश के एक मंदिर से देवी काली के एक मुकुट की चोरी की सूचना दिए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस घटना के साथ साथ राजधानी ढाका में एक दुर्गा पूजा पंडाल पर कथित क्रूड बम हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। काली देवी का मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिया था। इन घटनाओं को निंदनीय बताते हुए विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं, अन्य अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हमलों का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को ढाका के प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया और कहा कि सरकार बांग्लादेश को इस तरह बनाना चाहती है जहां प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99वें स्थापना दिवस विजयदशमी के अवसर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदू समाज को संगठित रहने को कहा
कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। विश्व भर के हिंदुओं के भारत के सरकार की सहायता उनको मिले ये उनकी आवश्यकता है, परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है।
कई विपक्षी दलों ने श्री भागवत के इस तर्क का जवाब देते हुए उन्हें अपने भीतर झांकने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि शायद बांग्लादेश का हाल देखने के बाद उन्हें भारत के अल्पसंख्यकों की दशा भी समझ में आएगी।
Well, I'm glad from the minorities in Bangladesh it is learnt to appreciate what minorities go through. And I hope that RSS and Mohan Bhagwatji will be henceforth more sensitive towards minorities everywhere, including in India.
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपने अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 84.14 भारतीय रुपये पहुंच गई। रुपये में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, विदेशी फंड्स का भारत से निकलकर चीन में निवेश करना और विदेशी बैंकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की मांग में वृद्धि को लेकर चिंताओं के कारण मानी जा रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की दशहरे की रात पटाखों के शोर की आड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है। मुंबई पुलिस ने हत्या के आरोप में अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी।
एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है, ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।
विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले इस तरह के अपराध पर महायुति सरकार की भर्त्सना की है। विपक्षी दल कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी नायक ने इस हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
सुनसान राहों पे डर तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर तो दिन दहाड़े डर, और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है, और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होंठ सिले।
साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को चेतावनी भी दी
कि डबल इंजन सरकार है तो डबल जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी। और अगर नैतिकता का लेश मात्र भी आपके अंदर बचा है, अगर आपकी अंतरात्मा जरा सी भी आवाज दे रही है, तो शिंदे जी, फडणवीस जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं दिया जाता है, जैसा कि मैं जानती हूं, तो जनता तैयार बैठी है आपकी कुर्सी आपके पांव के नीचे से खींचने के लिए।
दिल्ली के लद्दाख भवन के बाहर अनशन पर बैठे विश्व प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को रविवार के दिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। श्री वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए थे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने सरकार के रवैये पर दुख जताते हुए इसे संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 की भावना के खिलाफ बताया।
अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की माँ जो है उसके दिल दिल्ली में, राजधानी में, कंटिन्यूस बेसिस पर परमानेंटली ये धारा लगानी पड़ रही है। ये धारा विशेष हालतों में, जहाँ कोई बड़े उपद्रव की आशंका हो, वहां पर लगाई जाती है और टेम्पररीली लगाया जाता है। इसका नेचर ही टेम्पररी है, तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर। और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए।
और अब समाचार खेल जगत से। शारजाह में खेले गए महिला T20 विश्व कप के एक रोमांचक मुकाबले में रविवार रात ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। भारतीय टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन पारी के मध्य में सधी हुई गेंदबाजी और फील्डिंग के चलते भारतीय टीम दबाव में आ गई। अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन एनाबेल सदरलैंड के इस ओवर में नाटकीय ढंग से 4 विकेट गिरे, जिनमें 2 रन आउट रहे, जबकि 2 बल्लेबाजों को सदरलैंड ने आउट किया। भारत की ओर से केवल कप्तान हरमनप्रीत कौर 47 गेंदों में 54, दीप्ति शर्मा 25 गेंदों में 29 और शाफली वर्मा 13 गेंदों में 20 रन बना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कुछ सामना कर पाईं। अब भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच पर टिकी है। यदि पाकिस्तान टीम अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को हरा देती है और भारत को रन औसत में नहीं पछाड़ पाती, केवल तभी भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश पा सकती है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।